જયપુર માં તારીખ 10/10/89 પ્રવચન સાર ગાથા 80 ઉપર પૂજ્ય ભાઈસિંહ નું પ્રવચન.
શ્રી પ્રવર્તન સાર શાસ્ત્ર કા ગાથા એસી લેને કા વિચાર હૈ. પ્રવર્તન સાર જો કુંદકુંદ આચાર્ય ભગવાન ને લિખા હૈ ઓર પ્રવર્તન કા સાર યા સાત દૂરધ્વનિ કા સાર ઉસમે ભરા હૈ ઉસકી એસી નંબર કી ગાથા હૈ. જો જાણદી અરહંતમ દવત ગુણ પજય તે હિ સો જાણદી અપાણ મોહ ખલુ જાદુ તસ્લેમ. ઇસકા અર્થ જો શ્રી અરહંત ભગવાન કો દ્રવ્યપને ગુણપને વ પર્યાયપને કી અપેક્ષા જાણતા હૈ સો હી આત્મા કો જાણતા હૈ. ये अपना आत्मा को जानने के लिए वो उत्कृष्ट निमित्त की बात फरमाते हैं. वो आदर्श है. अरहंत भगवान अपने लिए आदर्श है. सिद्ध की बात नहीं किया और अरहंत की बात किया. उसका अर्थ ऐसा है अरहंत भगवान सशरीरी होता है. उसकी दिव्य ध्वनि छुटती है और वो सचमुच उपकारी सिद्ध अवस्था का भी ज्ञान कराने वाले अरहंत भगवान है. तो पंच परमेश की पद में पहला नाम अरहंत का आता है, दूसरा नाम शिव भगवान का आता है. तो इधर अरहंत भगवान अपना आदर्श रूप है. उसको जानकर वैसा ही मैं हूँ निमित्त का ज्ञान करने के बाद उपादान का ज्ञान करना. केवल निमित्त का ज्ञान करने में रुक नहीं जाना. निमित्त का ज्ञान करने के बाद उपादान का ज्ञान करना. निमित्त उपादान को ज्ञान कराने के हेतु है. निमित्त का आश्रय लेने की बात है नहीं. निमित्त से उपादान में कार्य होता है ऐसा भी है नहीं. मगर जो सीधा अपना आत्मा को नहीं जानता है अज्ञानी जीव, उसके लिए एक आदर्श बताते हैं. जो जैन मत में आ गया है, पंच परमेश्वरी को मानते हैं, अरहंत भगवान को मानते हैं, यहाँ तक आ गया है, ऐसे जीव की बात इधर लिया है. जो जैन मत से बाहर है, जो सर्वज्ञ अरहंत को मानता ही नहीं है, उसकी बात इधर लिया नहीं है. और अरहंत को जानकर वो वहीं अटक जाता है तो भी उसको आत्मा का मोक्ष होता नहीं है. अरहंत को जानकर ऐसा मैं हूँ ऐसा आत्मा को जानने से अर्थात अनुभव करने से मोह का क्षय होता है. मोह का उपशम और क्षोक्षम ऐसी बात नहीं लिया है. मोह अर्थात दर्शन मोह. दर्शन मोह का दो प्रकार है. एक भाव दर्शन मोह मिथ्या, तो एक निमित्त रूप दर्शन मोह का उदय होता है. तो ऐसा मोह का क्षय का ये गाथा है. अनादि काल के भले मोह मिथ्या तो है पर्याय में तो भी उसका नाश हो सकता है, क्योंकि विभाव होने से नाश हो सकता है. स्वभाव का नाश हो सकता नहीं है और विभाव का नाश जरूर हो सकता है. तो मोह का क्षय की ये उपाय गाथा है. उसका शीतल प्रसाद जी ने अनुवाद किया है संस्कृत से बहुत साल पहले की ये प्रवर्तन सार की ऐसी गाथा पर उसके अपने अध्ययन करना है. 3 दिन पहले कहा था कि पहले सविकल्प प्रमाण ज्ञान के अंदर आया जीव तो द्रव्य और पर्याय सापेक्ष परस्पर सापेक्ष ऐसा ज्ञान करना चाहिए. द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्या पर्याय नहीं, द्रव्य नहीं। द्रव्य और पर्याय अविनाभाव संबंध है, जहां जहां द्रव्य है तहां तहां पर्याय है, पर्याय है तहां तहां द्रव्य भी। एक इला द्रव्य नहीं, एक इला पर्याय भी नहीं। ऐसे परस्पर सापेक्ष का ज्ञान होने से आत्मा प्रमाण ज्ञान का विषय में आ जाता है, प्रमाण से बाहर की बुद्धि छुप जाती है और अंदर में द्रव्य पर्याय परस्पर सापेक्ष है ऐसा ज्ञान हो जाता है। और ऐसे ज्ञान होने के बाद वो सब सविकल प्रमाण में आ गया। इसके बाद जो सापेक्ष कहा द्रव्य पर्याय को, वही द्रव्य पर्याय को परस्पर निरपेक्ष जान लेता है, वो भी सविकल्प है। द्रव्य में पर्याय नहीं, पर्याय में द्रव्य नहीं, परस्पर निरपेक्ष। सापेक्ष होने पर भी नई विवक्षा से प्रमाण से सापेक्ष, नई विवक्षा से निरपेक्ष है। द्रव्य और पर्याय सत है दो, वो सब सविकल्प में आया। सविकल्प में आने के बाद वो पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो नाशवान क्षणवर्ती पर्याय है। मैं तो त्रिकाली अविनाशी परमात्मा अनंत गुण का पिंड हूं। ऐसे व्यवहार का पक्ष छोड़कर सविकल्प दशा में अनुभव से छूटता हो तो अपूर्व चीज है। और बाद में कि द्रव्य सामान्य में हूं, ज्ञायक हूं, प्रमत अप्रमत परिणाम मेरा स्वभाव ने उससे मैं जुदा हूं, तो निश्चय नहीं का पक्ष में आ जाता है आत्मा। और बाद में निश्चय नहीं का जो पक्ष का विकल्प था कि मैं ज्ञानानंद हूं, एक हूं, शुद्ध हूं, अभेद हूं, ऐसा विकल्प छूट जाता है। ऐसा विकल्प छूटने से आत्मा का जब अनुभव होता है तब परस्पर सापेक्ष ऐसा ज्ञान हो जाता है। निरपेक्ष आया तो श्रद्धा का विषय बन गया, अगर श्रद्धा का विषय में दृष्टि पड़ी तो अनुभव हुआ, तो अनुभव के काल में मैं द्रव्य पर्याय परस्पर सापेक्ष हूं ऐसा ज्ञान का ध्येय हो जाता है। ज्ञान का ध्येय तो ध्रुव परमात्मा है, और ज्ञान का ध्येय उत्पाद में ध्रुव है, ऐसा एक समय में श्रद्धा और ज्ञान की संधि होती है, ध्येय और ध्येय की। वो बात इसमें प्रवृत्तिसार की ऐसी नम्र की गाथा में है। तो अध्यात्म और आदम का विरोध टल जाता है। अविरोध रूप से आत्मा, आत्मा को जानने के समय आत्मा आश्रित जो शुद्ध उपयोग हुआ वो सहित आत्मा को जानता है। उपयोग से रहित श्रद्धा का विषय है, उपयोग से सहित ज्ञान का ज्ञेय हो जाता है। समय एक है तो अध्यात्म आगम अविरोध रूप से ज्ञात हो जाता है। ऐसी अपूर्व बात इसी नंबर की गाथा में दृष्टि और ज्ञान की संधि की बात इसमें है। संधि हो जाती है, विरोध नहीं होता है। देखो अभी आचार्य भगवान क्या फरमाते हैं, जो कोई अरहंत भगवान को द्रव्यपने गुणपने तथा पर्यायपने की अपेक्षा जानता है, आदर्श निमित्त रखा, बाद में उसको जानने के बाद इधर जानने की बात आती है, जानता है वह पुरुष अरहंत के ज्ञान के पीछे अरहंत का ज्ञान करने के बाद वहां रुकता नहीं है। अरहंत का ज्ञान में, अरहंत का ध्येय गुण और पर्याय का ज्ञान हुआ उसमें वो रुकता नहीं है, और उसके पीछे अपने आत्मा को जानता है। अरहंत भगवान का आत्मा को जाना ध्येय गुण पर्याय से, उसके पीछे बाद में अपना आत्मा को जानता है। इस आत्मज्ञान के प्रताप से उस पुरुष का दर्शन वो निश्चय से क्षय हो जाता है। क्षय की ध्वनि है, उत्सम नहीं। हे अनादि मिथ्या दृष्टि जी, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की बात है इधर, तो भी प्रथम उपशम होता है, होता है तो उपशम, मगर क्षय की ध्वनि है, निश्चय से क्षय हो जाता है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन तो ये काल में है नहीं, पर्यंत भगवान साक्षात वीर बनी तो है नहीं, तो भी क्षय हो जाता है मोह का। हाँ, वो अप्रतिहत की उपार दशा है, वो फिरने वाला उस समय से क्षोभ समय क्षोभ समय क्षायिक हो जाता है, ऐसी परंपरा लेकर मोह का क्षय हो जाता है ऐसा लिखा। निश्चय से खरेखर मोह का नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। इसका विस्तार यह है कि अभी इतना तो वो गाथा का संक्षेप में अर्थ किया, अभी जो टीका है उसका अर्थ चलता है। इसका विस्तार यह है कि अरहत आत्मा के केवल ज्ञान आदि विशेष गुण है, और यंत भगवान में जो केवल ज्ञान आदि है वो विशेष उसका गुण है, अस्तित्व आदि सामान्य गुण है, एक विशेष गुण दूसरा अस्तित्व सामान्य गुण। परम औदारिक शरीर के आकार जो आत्मा के प्रदेशों का होना तो व्यंजन पर्याय है। अगुरु लघु गुण द्वारा छह प्रकार हानि वृद्धि वृद्धि हानि रूप से वर्तन करने वाले अर्थ पर्याय है, एक व्यंजन पर्याय एक अर्थ पर्याय। पहले विशेष गुण लिया, सामान्य गुण लिया, व्यंजन पर्याय लिया, अर्थ पर्याय लिया। इस तरह लक्षणधारी गुण और पर्यायों के आधार रूप अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी शुद्ध चैतन्यमय अन्वय रूप अर्थात नित्य स्वरूप अरहंत द्रव्य है, अरहंत का द्रव्य की यह व्याख्या किया। इस तरह द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अरहंत परमात्मा को पहले जानकर, अरहंत का द्रव्य गुण और पर्याय को जानकर, फिर निश्चय से उसी द्रव्य गुण पर्याय को आगम का सारभूत जो अध्यात्म भाषा है, आगम के बाद अध्यात्म की अपेक्षा से विषय लिया, वो सब आगम की बात है, ऊपर का बात आया, सब सामान्य विशेष व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय सब वो आगम से लिया। अभी अध्यात्म की बात करते हैं। आगम का सारभूत क्या कहा, आगम में जो लिखा है उसका जो सारभूत है वो अध्यात्म भाषा है। आगम भाषा और अध्यात्म भाषा दो का विभाग किया, उसमें जानने की चीजें अध्यात्म में उपादेय तत्व की मुख्यता है, अध्यात्म भाषा है, उसके द्वारा अपने शुद्ध आत्मा की भावना के सन्मुख होकर, देखो मूल चीज है अध्यात्म भाषा में क्या आया, आगम भाषा में तो चार प्रकार का वर्णन जानकारी दे दिया, अभी उसके द्वारा अर्थात अध्यात्म भाव के द्वारा अपने शुद्ध आत्मा की भावना के सन्मुख होकर, अभी सविकल्प की बात चलती है, जैसा मेरा शुद्ध आत्मा है ऐसा मैं हूं, जो प्रमत अप्रमत से रहित है, बंधमुख से रहित है, षटकारक की परिणाम की क्रिया से मैं भी भिन्न हूं, नव तत्व का जो व्यवहार नहीं का विषय भूत नव तत्व है उससे मैं जुदा हूं, ऐसा शुद्ध आत्मा की भावना के सन्मुख, अभी विचार सन्मुख हुआ है, उपयोग सन्मुख होकर अनुभव नहीं हुआ है, भावना के सन्मुख होकर अर्थात उसका खुलासा, शुद्ध आत्मा की जो सन्मुख विचार आया भावना उसका अर्थ आचार्य भगवान खोलते हैं कि शुद्ध आत्मा की सन्मुख की भावना का अर्थ क्या, कि विकल्प सहित स्वसंवेदन ज्ञान में परिणमन करते हुए, विकल्प सहित जो ज्ञान मानसिक ज्ञान है आगम के द्वारा जाना मानसिक ज्ञान से, और मानसिक ज्ञान से जानने से मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा अपना जो राग मिश्रित ज्ञान उपयोग है, जिसमें अपना आत्मा का अनुमान आ जाता है, अनुमान के बाद अनुभव आता है, अनुमान का अर्थ व्यवहार सिद्धांत है, अनुभव का अर्थ है निश्चय सिद्धांत, मगर अनुमान और अनुभव में उसका विषय में तफावत नहीं है। ये आखिर का है ना स्वाध्याय मेरे लिए इधर, तो ये माल माल की बात आती है। ज्ञानचंद जी साहब का छोटा लड़का ने कहा ना आखिर में, ये साक्षात अमृत का पान करने की बात है, ये साक्षात अमृत पीने की बात की गाथा है। मोक्ष का क्षय होता है, सम्यक दर्शन होता है, उसी काल में आत्मा को अनंत काल से नहीं आया हुआ ऐसे सिद्ध भगवान और हम भगवान की जात का आत्मिक आनंद आता है। मात्रा मां फेर है, बाकी जात एक है। मात्रा में बड़ा फर्क है, जैसे सेकरीन का दर्पण और साकर खान का दर्पण में 550 गुना है, उसमें तो 550 गुना मिठास है, स्वीटनेस है सेकरीन में। ऐसे ऐसे अरहंत और सिद्ध का आनंद की तो क्या बात करे, वो तो पूर्ण आनंद उसको प्रकट हो गया। मगर उसकी जात का जात एक ही है, मात्रा में फर्क है। जब चतुर्गुण स्थान में जीव आता है, मोह का क्षय हो जाता है मिथ्यात्व का, तब साक्षात अमृत को पीता है, अतीन्द्रिय आनंद का रस उसको आता है, आत्मा का प्रत्यक्ष स्वाद आता है। तो वो प्रत्यक्ष स्वाद आने के पहले किसी किसी प्रोसेस में से वो आत्मा निकलता है, निकलता है कहते हैं उजड़ता है। प्रत्यक्ष अनुभव आत्मा का होने के पहले किसी किसी वो प्रोसेस में से आ जाता है, प्रोसेस आ जाती है, बाद में अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। पहला परोक्ष होता है, बाद में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इधर कहा कि अध्यात्म भाषा से ये शुद्ध आत्मा की भावना की जो सन्मुख विचार आया, मन में शुद्ध आत्मा आ जाता है, बाद में ज्ञान में आ जाता है। तो उसका खुलासा किया कि शुद्धात्मा की भावना के सन्मुख होकर उसका क्या अर्थ के विकल्प सहित स्वसंवेदन ज्ञान में, उसका संस्कृत में है सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञानेन, ऐसा संस्कृत का शब्द है नीचे लिखा है। विकल्प सहित स्वसंवेदन ज्ञान में परिणमन करते हुए वो जो उसका स्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है, जो विकल्प के साथ है राज विशिष्ट ज्ञान है, भाव इंद्री है, भाव मन है, वो भाव मन में भगवान जो आत्मा, उसके बाद जो प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है, ऐसा पहले अपना शुद्ध आत्मा अनुमान में आ जाता है। तो प्रोसेस है सब, ज्ञान में परिणमन करते हुए परिणमन चालू हो गया। एकीला श्रद्धान नहीं है, एकीला कोरा ज्ञान नहीं है, हाँ आनंद सहित ज्ञान नहीं है, वो बाकी है। मगर जैसा शुद्ध आत्मा है, प्रत्यक्ष ज्ञान में अनुभव आने वाला है, उसके पूर्व भूमिका में उसको परोक्ष ज्ञान में शुद्ध आत्मा कैसा है, ऐसा उसका ख्याल में ज्ञान में मन में आ जाता है। अनुभव के बाद जो उसको फेर नहीं करना पड़ता है, जो प्रत्यक्ष अनुभव आता है उसमें जैसे शुद्ध आत्मा का दर्शन हुआ, वैसा ही मेरा अनुमान ज्ञान में प्रथम आ गया था, बाद में छाप लग जाती है। ये मूल की गाथा है, मोह का क्षय का उपाय। परिणमन करते हुए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा परिणमन चालू हो जाता है, सामान्य का पक्ष आ जाता है। ऐसे ही आगम की भाषा से अभी आगे अध्यात्म भाषा में तो आत्मा का सन्मुख की बात किया, अभी आगम भाषा में क्या है? आगम की भाषा से अधकरण अपूर्वकरण अनिवतीकरण नाम के परिणाम विशेषों के, परिणाम विशेषो यानी खास प्रकार का परिणाम जो अनंत काल से नहीं आया, ऐसे सूक्ष्म परिणाम आता है, जब आत्मा की भावना में आत्मा जाता है, उसकी प्रगति आत्मा की भावना में और दिखती है, कहां तक तो वो बुद्धि पूर्वक उसको भी ख्याल में रहता है, मगर इससे जब सूक्ष्म परिणाम आ जाता है आत्मा की ओर झुकने का, वहां अंतर्मुख होने का, अंदर में वेग वेग बढ़ जाता है, तो अनुभव के पहले बीच में ऐसे सूक्ष्म परिणाम आ जाता है जो केवल केवल ही भगवान के गम्य है, छद्मस्थ उसको जान सकते नहीं है। अनिवर्तनीय नाम के परिणाम विशेष को बल से जो विशेष विशेष भाव विशेष भाव दर्शन मोह के क्षय करने में समर्थ है। क्या कहा कि जो अपूर्व करण अधिकरण अपूर्व करण अनिवर्तनीय परिणाम है सूक्ष्म, तो परिणाम आत्मा की जो सन्मुख हुआ सूक्ष्म, तो ये जो सूक्ष्म परिणाम उत्पन्न हुआ वो मिथ्यात का नाश करने में समर्थ तो है, मगर नाश ना होता नहीं है। थोड़ा अभ्यास हो तो बहुत मजा आए,
समर्थ नहीं है,
समर्थ नहीं है, क्षय करने में समर्थ नहीं है, विशेष भाव दर्शन वो के क्षय करने में समर्थ तो है, मगर उसमें क्षय करने की ताकत नहीं है। वो परिणाम में वो परिणाम मानसिक है, आत्मा का आश्रय से अभी नहीं आया, पराकृत परिणाम है, शुभ भाव है, उत्कृष्ट शुभ भाव है, वो शुभ भाव भी चले जाने वाला है, मगर गया नहीं है, समर तो है मोक्ष में, समर तो है, मगर उसमें वो परिणाम में मोक्ष होता नहीं है। तो मोक्ष कहाँ होता है वो बात सारी इधर बतानी है। मोक्ष दर्शन मोह भाव दर्शन मोह, द्रव्य दर्शन मोह की बात नहीं, वो दर्शन मोह जो जड़ है वो तो अपने आप क्षय हो जाता है, वो आत्मा उसको क्षय करता नहीं है, और जो मिथ्यात का परिणाम है वो भी क्षय हो जाता है, आत्मा उसको क्षय करता नहीं है, मगर वो विधि चलती है अंदर में, जब परिणाम आत्मा की ओर झुकता है, जलता है, नमता है, डरते डरते डर जाता है, नमते नमते नम जाता है, नमस्कार हो जाता है आत्मा। पदम सिंह जी साहब, ऐसी बात अपूर्व है, गुरुदेव के प्रताप से वो बात अपनी तक आया, अपने तक आया, हमका हमके इतनी लायकात नहीं थी कि सीधा हम अप्रोच कुंतुन भगवान और अमरचंद्र आचार्य के साथ अप्रोच करे, हमारी सीधी लायकात हो नहीं थी, तो उसके इसके अप्रोच के लिए सिमंद्र भगवान ने गुरुदेव को इधर अपने लिए भेजा, तो उसने कुनकुन भगवान का अप्रोच कराया, और कुनकुन भगवान के द्वारा अरिहंत का अप्रोच कराया, और अरिहंत का अप्रोच द्वारा शुद्धात्मा का अप्रोच। ऐसी बात है, अलौकिक बात है, उसके माध्यम से ही समझ में आया ने। हम तो स्थानकवासी थे, हम मूर्ति को मानते नहीं थे जन्म से, तो दिगंबर धर्म है कि नहीं वो भी मैं नहीं जानता था, एक खूणा मां बुढ़ावा मेरा था, एक श्वेतांबर और एक स्थानकवासी, दो धर्म है जैन धर्म का, फिर का दिगंबर धर्म है वो भी जानने में नहीं आया था, मगर जब श्रीमद् राजचंद्र ये आत्मा आया तो वहां से अध्यात्म की रुचि हो गई, और बाद में गुरुदेव मिला, तो गुरुदेव ने कुनकुन भगवान को अप्रोच किया, और उसके द्वारा अरिहंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय को जाना, वो उसके माध्यम से आत्मा को जाना, तो मोक्ष ही जीव को हो जाता है, ऐसी बात है। ऐसा आता है निमति में, एक गुरु और एक शिष्य दो, उसमें किसके वंदू किसको वंदू, ऐसा आता है ना, कोई गुरु गोविंद दोनों खड़े,
गुरु आपने गोविंद दिया,
तो मैं तो गुरु को वंदन अरे गुरु का वंदन में अर्जुन का वंदन, अरे आत्मा का वंदन आ जाता है। सुन तो सही, आप गुरुदेव की बात बात क्यों बात करते हैं? जिसका उपकार होता है उसके प्रति अर्पणता आता है, जिसका सीधा उपकार नहीं है इसके प्रति इतना अर्पणता आता नहीं है। पतंजलि जी साहब मर्म है उसमें। हाँ अलौकिक बात है। तो अपने तो देशना लबड़ी तो मिली, गुरुदेव के पास से मिली है तो उसका उपकार सज्जन भूल सकता नहीं है। नींद में भी उसका उपकार का भजन आता है। योग्यता थी उन तो बाहर की चीज है, उनसे तो संयोग मिलता है और योग्यता से आत्मा की प्राप्ति। क्या फरमाते हैं संत दिगंबर संत की वाणी, साधु हुआ तो सिद्ध हुआ। दिगंबर संत की क्या बात करें। आचार्य भगवान फरमाते हैं कि सुन, इसे आत्मा की जो सम्मुख परिणति आई वो तो बुद्धिपूर्वक है, बाद में अधकरण अपूर्वकरण अनैतिक परिणाम आया, क्योंकि उसकी एकाग्रता आत्मा की ओर झुकने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो सूक्ष्म परिणाम हो जाता है। तो परिणामों के बल से जो विशेष भाव दर्शन मोह के क्षय करने में समर्थ है मगर उसमें क्षय होता नहीं है। सामर्थ्य तो आ गया, अवश्य क्षय होगा। प्रलब्धि के परिणाम में आया तो क्षय तो होगा मगर वो परिणाम में क्षय होने की ताकत नहीं है। परंपरा है मगर वर्तमान पर्याय में ताकत मौका क्षय की करलब्धि का परिणाम में नहीं है, आगे जाकर मौका क्षय होता है। ऐसी सब विधि इसमें बताएगा। विशेष भाव दर्शन मोह के क्षय करने में समर्थ है, अपने आत्मा में जोड़ता है उपयोग को, अपना आत्मा को अंदर नायक की ओर जाता है, जोड़ता है, जोड़ने की प्रोसेस चालू हो गई। जो आत्मा के अंदर उपयोग का योग हो जाए तो मोक्ष ही हो जाए मगर अंदर में अभिमुख परिणाम जाता है, वहां तक शुद्धात्मा के तक पहुंचा नहीं है और बाहर में जाता नहीं है, अंदर तक पहुंचता नहीं है, वो भीतरी परिणाम की स्थिति का नाम अधकरण अपूर्वकरण अनिवर्तीकरण कहा जाता है। आत्मा अभिमुख हुआ मगर शुद्ध आत्मा का तक उपयोग पहुंचा नहीं है, वचली भूमिका का नाम अधकरण अपूर्वकरण अनिवर्तीकरण कहा जाता है। समर्थ है अपने आत्मा में जोड़ता है उसके पीछे। यहां तक सब सविकल्प दशा है, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक, सविकल्प दशा की बात है। अभी आखिर में निर्विकल्प ध्यान आता है तो निर्विकल्प ध्यान के समय क्या होता है वो बात समझने जैसी है। अपने आत्मा में जोड़ता है परिणाम को, पर से तो विमुख हो गया और आत्मा की सन्मुख साक्षात नहीं हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ मगर परोक्ष में तो आत्मा ही आत्मा है। परोक्ष में देव गुरु शास्त्र नहीं है, परोक्ष में गुणस्थान नहीं है, परोक्ष में राग नहीं है, परोक्ष में पर्याय का अवलंबन छूट गया है, परोक्ष में आत्मा का अवलंबन आया है मगर प्रत्यक्ष आया नहीं है। प्रत्यक्ष आने वाला है, अवश्य आएगा, अभी आएगा, थोड़ी देर में आने वाला है। ऐसी बात है ज्ञानचंद जी। अरे दूसरा जीव अपनी प्रशंसा करे के न करे उसमें क्या माल पड़ा है भैया, पर राजी हो के राजी न हो अपने को राजी होना है, खुशी होना है, ओ इसके लिए भाव है तो जोड़ता है। उसके पीछे जब निर्विकल्प स्वरूप की प्राप्ति होती है, पहले सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान था, बाद में निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान आता है उसके पीछे। जब निर्विकल स्वरूप की प्राप्ति होती है तब जैसे जब द्रव्य पर दृष्टि पड़ती है, अभी प्रोसेस अंदर की चलती है, त्रिकाली सामान्य पर दृष्टि जाती है, उपयोग्यायक को उपादेय रूप जानने में आया, तब क्या होता है? वो मार्मिक बात है, जे और गे की संधि है, अध्यात्म और आगम का एक साथ ज्ञान होता है, समय सार और प्रवर्तन सार का एक साथ ज्ञान होता है, समय सार और तत्वार सूत्र का एक साथ ज्ञान हो जाता है, एक समय में हो जाता है। तत्वार सूत्र कहो, घुमर सर कहो, धवल माधवल, तो एक साथ उपयोग जब आत्मा की अनुभूति में चले गया तो एक साथ अध्यात्म और आगम का ज्ञान होता है। सामान्य का आश्रय से सामान्य विशेष का ज्ञान सारा हो जाता है, द्रव्य का अवलंबन से द्रव्य गुण पर्याय का अभेद नहीं से ज्ञान होता है, अभेद नहीं से ज्ञान होता है, भेद नहीं छूट जाता है, ये द्रव्य है गुण है पर्याय का भेद छूट जाता है। उसके पीछे जब निर्विकल स्वरूप की प्राप्ति होती है तब तब क्या होता है? वो ध्यान में आकर निर्विकल ध्यान लगाकर वो साधक जब छठा गुण स्थान में आता है तो छठा गुण स्थान में आने से वो जो प्रोसेस बच गई अंदर में उसका ज्ञान रह जाता है, निर्विकल ज्ञान छूट जाता है, मगर निर्विकल ज्ञान में क्या हुआ इसका ज्ञान छूटता नहीं है। क्या कहा? जब निर्विकल ज्ञान तो आ गया उस समय तो शास्त्र लिखते नहीं है, लिखने का प्रश्न ही नहीं, मगर निर्विकल ज्ञान में चले गए तब क्या हुआ? ज्ञान ने क्या और कैसे जाना आत्मा को? तो सविकल दशा में आते ही हुए तो ज्ञान तो रह जाता है, निर्विकल ज्ञान छूट जाता है। निर्विकल ज्ञान के समय में जो ज्ञान प्रकट हुआ भावसूत ज्ञान, उसने क्या और किस तरह से आत्मा को जाना, वो सविकल दशा में आकर कलम चला दे, ज्ञान छूटता नहीं है, ज्ञान छूट गया। निर्विकल ज्ञान छूट जाता है सविकल दशा में आकर, जो प्रत्यक्ष देखा हुआ आत्मा का स्वरूप वो कलम में चला कर लिख देते, अन्य मति अन्य जीव के लिए लाभ के लिए। तब जैसे पर्याय रूप से मोती के दाने, अभी हार का दृष्टान देते हैं, द्रव्य गुण पर्याय में उतारना है, अनुभव के काल में एकला सामान्य का ही ज्ञान होता है कि सामान्य विशेष का ज्ञान होता है? सामान्य का अवलंबन से सामान्य विशेष सारा आत्मा का ज्ञान हो जाता है, सम्य के कांत परो का निकांत हो जाता है, आश्रय एक का और ज्ञान दो का, आश्रय एक का ज्ञान अनंत का, अनंत गुण का, अनंत पर्याय अनंत धर्म का एक समय में ज्ञान होता है। जैसे केवल परमात्मा एक समय में उत्पादित रूपम सत को जानता है अपना आत्मा को, ऐसे निर्विकल ध्यान में साधक भाव सुख के ज्ञान द्वारा उत्पादित रूपम सत का ज्ञान होता है। ध्रुव का अवलंबन है, उत्पादित रूपम सत का ज्ञान है, मगर उसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो ध्रुव का है। इसमें आएगा सब, देखो ऊपर ऊपर से कहता हूं ना, शास्त्र का आधार। जैसे दृष्टांत पर्याय रूप से मोती के दाने, जो 108 मोती का जो हार हुआ समझो, तो उसमें मोती का जो दाना है एक में दूसरे का अभाव है, व्यतिरेक है, एक पर्याय में दूसरी पर्याय है नहीं, तो एक जो मोती का दाना है एक एक वो पर्याय के स्थान पर है दृष्टांत में, और गुण रूप से सफेदी, और जो उसके 108 मोती का दाना है उसमें सब में सफेदी है, सब में सफेदी एक प्रकार की है, सफेद का भाव एक प्रकार का है, पर्याय का भाव अनेक प्रकार का है, जाति भले मोती की मगर भिन्न भिन्न है। तो पर्याय और गुण, गुण लिया सफेद आदि, सफेद गुण सफेदी आदि अभेद नहीं से एक हार रूप ही मालूम होते है। आहा, जब उसको मोती का लक्ष्य छूट जाता है, सफेद काल छूट जाता है तो एक इला हार ही रहता है, हार पहनता है तो सुख होता है। मोती पर दृष्टि जाते दोरा भी पेराए नहीं, मोती भी पेर सके नहीं, मोती वो दोरा में परोवे तो हार बन जाता है और हार का सुख हो जाता है। तो दृष्टांत हार रूप हुई मालूम होते हैं, जैसे ही अभी वो सिद्धांत में बात लगाते हैं, आश्रय तो एक का धोखा है ज्ञाय का, दृष्टि का विषय छूटता नहीं है, दृष्टि का विषय फिरता नहीं है, दृष्टि का विषय में दृष्टि लग जाती है और ज्ञान भी दृष्टि का विषय का अवलंबन लेता है, ऐसा इसका नाम शुद्ध नहीं है। बहुत टाइम में अनुभव होता है तो आश्रय तो एक का है और ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय का है, मगर द्रव्य गुण पर्याय का भेद रूप ज्ञान नहीं है, वो भी अभेद नहीं से आत्मा हो जाता है। फिर से जो त्रिकाली अभेद सामान्य अनंत गुणात्मक है, अभेद अनंत गुण से अभेद, वो तो दृष्टि का विषय, शुद्धने का विषय, वो तो सुरक्षित रखना, उसका आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है। जो उसका आश्रय आया तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो सम्यक ज्ञान ने क्या जाना कि एक इला त्रिकाली सामान्य मैं हूं, ऐसा जाना कि उसका आश्रय से ज्ञान और आनंद हुआ, उसको भी अभेद नहीं से जाना कि भेद नहीं से जाना, कि भेद नहीं से नहीं जाना, अभेद नहीं से जाना, उसका नाम अभेद प्रधान द्रव्यार्थिक नहीं कहा जाता है। पर्याय से जो अनन्य होता है आत्मा, क्षणिक तादात्म्य, पर्याय व्याप्त हो जाती है द्रव्य में, प्रलीन हो जाती है, लीन हो जाती है, उसका नाम शास्त्रीय भाषा में अभेद प्रधान द्रव्यार्थिक नहीं कहा जाता है और भेद प्रधान पर्यार्थिक नहीं है। तो उसका टूका वाक्य अभेद नहीं, अभेद नहीं से आत्मा जाना, यानी द्रव्य गुण पर्याय का एक रूप एक सत्ता हो गई। एक सत्ता इसका अर्थ ये पर्याय तो पर्याय रूप रहती है, द्रव्य तो द्रव्य पर, मगर भेद मालूम होता नहीं है। वो कहते हैं देखो द्रव्य गुण पर्याय मूल शास्त्र का शब्द है, द्रव्य गुण पर्याय। आप द्रव्य गुण पर्याय को मानता है कि नहीं, कि एक इला ध्रुव को द्रव्य को सामान्य को मानता है कि नहीं, वो अन्य मति है। पर्याय को न माने तो अन्य मति है, और पर्याय का लक्ष्य आश्रय करे ने पर्याय को ही आत्मा माने तो भी अन्य मति है, और एक इला द्रव्य को माने ने पर्याय को न माने तो भी सांख्य मति है। सूक्ष्म बात है, संधि है दृष्टि और ज्ञान की, अनुभव काल में संधि हो जाती है, ज्ञातवाद साथ सुसंगत ऐसी दृष्टि प्रकट होती है। समय के कान हुआ तो अनेकांत का ज्ञान वही समय हो जाता है द्रव्य पर्याय का। द्रव्य गुण पर्याय अभेद नहीं से आत्मा ही है, बोलो, द्रव्य गुण और पर्याय अभेद नहीं से आत्मा ही है। तो आज तक तो ऐसा सुना कि आत्मा पर्याय से रहते 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 इसलिए शुद्ध है, ये शुद्ध है, वही खरेखर आत्मा है, वही खरेखर आत्मा है। आज ये दूसरी बात कहां से आ गई कि वो तो पहले से थी, नहीं क्या है वो तो, वो जब पर्याय का पक्ष है वो छोड़ाने के लिए पर्याय से आत्मा रहित है, श्रद्धा का विषय आने से अनुभूति होती है, इसलिए पर्याय से रहित कहा, मगर पर्याय से सर्वथा रहित नहीं है, दृष्टि अपेक्षा से सर्वथा रहित है और ज्ञान अपेक्षा से कथनचित सहित और कथनचित रहित का ज्ञान अनुभूति के काल में हो जाता है। द्रव्य गुण पर्याय अभेद नहीं से आत्मा ही है, बोलो, और पर्याय से रहित वाला आत्मा न अभी पर्याय से सहित वाला आत्मा, क्या आत्मा दो प्रकार का है? आत्मा तो एक प्रकार का है, उसकी विविक्षा में फेर है, बाकी आत्मा तो एक ही प्रकार का है। इस तरह भावना करते करते दर्शन मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। वहां दर्शन मोह का अंधकार नष्ट हुआ, उसमें सामर्थ्य तो है, समर्थ तो हो गया कर्ण लब्धि परिणाम में, पर मोक्ष हुआ नहीं, क्योंकि इसका ध्रुव का ही मात्र ज्ञान हुआ था वहां। ध्रुव का आश्रय है ना, तो ध्रुव का ज्ञान था। मगर ध्रुव के ज्ञान करते करते जो द्रव्य का ज्ञान करता है, जो परिणाम द्रव्य का ज्ञान करता है, वो परिणाम द्रव्य के साथ व्याप्त होकर अभेद निश्चय आए आत्मा का ज्ञान होता है। ये होता है द्रव्य गुण पर्याय अभेद निश्चय, जो आत्मा का उसका नाम स्वगे है, और पर्याय से रहित आत्मा है उसका नाम ध्येय है। और ध्येय का ज्ञान होता है तो ज्ञाता ज्ञान और ध्येय का भेद मालूम पड़ता नहीं, और ज्ञाता ज्ञान ध्येय का भेद मालूम होता नहीं। भेद तो है मगर भेद मालूम होता नहीं। ऐसे अपूर्व संधि के बाद स्वभाव का आश्रय से, त्रिकाली सामान्य शुद्धात्मा का आश्रय से, पर्याय से रहित ऐसा सद्धान उत्पन्न होने के काल में पर्याय से सहित मैं हूँ। आनंद पर्याय प्रगट हो इससे सहित मैं हूँ। समय प्रसंदान चरित्र का परिणाम से सहित मैं हूँ। ऐसा रहित और सहित कथन की उसका ज्ञान बराबर हो जाता है। अभी प्रवचन सार में 15 मिनट बाकी है, तो प्रवचन सार के अंदर जो अमृतचंद आचार्य की टीका है ये गाथा पर, वो भी साथ में ले ले, 15 मिनट का टाइम है, मैं लेता हूं। जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। उसने खुलासा कि वहां तो अरहंत भगवान का जो द्रव्य है चेतन रूप है, उसके गुण में चैतन्य गुण है, और उसमें पर्याय में केवल ज्ञान की विवर्तन है, और इधर भी चेतन चैतन्य गुण और इधर भी ज्ञान की पर्याय है, मगर वहां केवल ज्ञान है, इधर मति शुद्ध ज्ञान है, और इधर केवल ज्ञान शक्ति रूप है, केवल ज्ञान प्रगट नहीं है, प्रगट तो अंश है मति शुद्ध का, मगर वहां मोह नहीं है, राग द्वेष नहीं है, और इधर भी मोह राग द्वेष नहीं है, ऐसा आत्मा का पहला जानने में ख्याल लेना। हा हा हा, उसके साथ मिलाना है न, और मोह का क्षय करने की बात है ना, तो मोह सहित आत्मा का ज्ञान नहीं करना। मोह है उसको गौण कर देना, अभी गौण कर देना, मोह तो पर्याय में है, मगर एकीला मोह नहीं है, मोह के साथ उपयोग भी उत्पन्न होता है, वो तो उपयोग को कोई जोता नहीं है ना, मोह को देखता है, राग को देखता है, मगर राग को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय में बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आता है, ऐसी ज्ञान की पर्याय प्रकट समय समय पर होती है, उसका नाम ज्ञान है, उसको तो कोई देखे नहीं। अरहंत का द्रव्य गुण पर्याय जैसा मैं हूं, तो वहां मोह राग द्वेष नहीं है, मेरे में द्रव्य में चेतन गुण में चेतन ज्ञान गुण और प्रकट होती है पर्याय, वो उपयोग वो परिणाम जीव का है। ओ मोर आज देश भले अभी क्षय न हुआ तो भी अभी उसको याद मत कर, उसको गौण कर दे, क्षणवार भूल जा, नहीं तो उसके साथ मिलान नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ मिलान करने की बात है, वहां मोह नहीं है, तो वहां इधर मोह होने पर भी मेरे में मोह संबंधी ज्ञान और आत्मा संबंधी ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान तो ऊर्ध्वपणे ले ले परिणाम में, परिणाम में मोह मत ले अभी थोड़ी देर के लिए। शक्ति रूप तो केवल ज्ञान मेरे में है, मगर व्यक्ति रूप केवल ज्ञान मेरे में नहीं है, तो भी मिलान तो होता है, क्योंकि वहां भी जानने की क्रिया होती है, और इधर भी सब अहेतु व्यक्ति क्रिया प्रकट हो जाती हो रहती है, चालू रहती है, चालू मिथ्या दृष्टि के लिए भी सब अहेतु व्यक्ति क्रिया जानने की क्रिया चालू है। एकीला मोह होता नहीं है, एकीला राग द्वेष मोह नहीं होता है, साथ साथ में ज्ञान की तो उपयोग का उत्पादन हो, एकीला मोह का उत्पाद हो तो आत्मा जड़ बनता है, और एकीला उपयोग का उत्पाद हो और राग द्वेष मोह का उत्पाद न हो तो सिद्ध होना चाहिए, दो का उत्पाद एक साथ में है, उपयोग भी प्रकट होता है और मोह भी अनाधिकार से प्रकट होता है। अभी मोह का नाश का उपाय बताते हैं, तो द्रव्य में चेतन गुण में चेतन और पर्याय में चेतन देख ले, चेतन वाली जो प्रिया है वो सचमुच जीव की है, वो राग में सचमुच परिणाम जीव का नहीं है, क्योंकि अभी उसका क्षय होगा। क्षय होने पर भी आत्मा का क्षय नहीं होगा, उपयोग का क्षय होगा, तो आत्मा का क्षय हो जाएगा, उपयोग का क्षय होता नहीं है, मोहराग देश का क्षय हो जाता है। कमाल, तो आखिर का दिन है इस टाइम के लिए, इस वक्त के लिए ये भगवान की वार्ता अलौकिक है, निज परमात्मा की कथा अलौकिक है। आचार्य भगवान फरमाते हैं कि सुन, एक थोड़ी देर के लिए परिणाम राग परिणाम मेरा है, उस थोड़ी देर के लिए भूल जा, थोड़ी देर के लिए ऐसा ले कि जो क्रोध आया किसने जाना, कि ज्ञान की पर्याय के जाना, तो वो ज्ञान की पर्याय जीव की है, वो ज्ञान की पर्याय जीव की साथ अनन्य है, और क्रोध आत्मा के साथ अन्य है, अनन्य सचमुच नहीं है, भले व्यवहार नहीं अनन्य कहे मगर निश्चय नहीं फरमाते है कि अन्य ही भाव है, मेरा भाव है नहीं है, क्योंकि मेरी जात का भाव नहीं है। तो चैतन्य की जात का द्रव्य गुण पर्याय इतना आत्मा है, जिसमें चैतन्य व्यापक नहीं है वो परिणाम मेरा नहीं है। और अहंत का स्वरूप अंतिम ताप को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति, जैसा सोटच का सोना होता है ना, ऐसा सोटच का वह शुद्ध हो गया ने परिस्पष्ट भाई, इसलिए उसका ज्ञान होने पर, अरहंत भगवान का ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। हाँ, मेरा आत्मा का तो ज्ञान होता है मगर सब आत्मा ऐसा है ऐसा ज्ञान हो जाता है, अलौकिक बात है। वहां अन्वयी वह द्रव्य है, अन्वयी का अर्थ वैसा का वैसा वैसा ध्रुव चलता है ना, सब परिणाम में बद में ध्रुव 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 ध्रुव, उसका नाम अन्वयी है, अनादि अनंत अन्वयी वह द्रव्य है। अन्वय का विशेषण, द्रव्य का जो विशेषण, द्रव्य विशेष है विशेष है, उसका विशेषण वह गुण है, और अन्वय के व्यतिरेक द्रव्य का भेद भेद वे पर्याय है, द्रव्य गुण और पर्याय तीन आ गया। इधर द्रव्य गुण पर्याय को तो आप मानते नहीं है सोनगढ़ वाला, अरे द्रव्य गुण पर्याय को सोनगढ़ वाला ही मानते है, सुन तो सही, द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान कैसा होता है वो तेरे को मालूम, ये द्रव्य है गुण है पर्याय है, ऐसा भेद का लक्ष्य से द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होता नहीं है, भेद का लक्ष्य से मिथ्यात्व सहित विकल्प उत्पन्न हो जाता है। सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर, पहला ख्याल आता है ना, वहां जाने की जरूर नहीं हो, सिमंदर भगवान के पास जाने की जरूर नहीं है, इधर से उसका ख्याल आ जाता है, भले आगम से पहले बाद में अनुभव से ख्याल आ जाता है, अरहंत का स्वरूप का ख्याल आ जाता है। कल रात को बताया था, जीव तीनों प्रकार युक्त समय को अर्थात द्रव्य गुण पर्याय में निज आत्मा को अपने मन से जान लेता है, पहले ज्ञान से जाना नहीं मन से जान लेता है, अनुमान से जान लेता है कि ये द्रव्य है ये गुण है ये पर्याय, पर्याय में मात्र चेतन का चिन्ह विवर्तन लिया, पर्याय में राग द्वेष मोह नहीं लिया, क्योंकि वह नहीं है वहां है ये में है इसमें है, वह नहीं है और उसमें होने पर भी दौड़ करके अभी मैं उसको भूल जाता हूं, क्षय करने के लिए थोड़ी देर में मैं भूल जाता हूं कि मेरे में नहीं है। तो उनमें अपने मन से जान लेता है, उसमें लिया था सविकल स्वसंवेदन ज्ञान, इसमें लिया मन के द्वारा जान लेता हूं, बात एक ही है मन से जान लेता हूं समझ लेता हूं, मेरी समझ में आ गया कि ये द्रव्य है ये गुण है वो ये पर्याय है। उसमें प्रमाण के बाहर जाने की तो बात है ही नहीं, वो तो दूर ही रहो कि परजीव क्या करता है ने वहां क्या होता है ने वहां क्या होता है, छोड़ दे माथा पोट, हाँ 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 वो तो माथा तेरा टूट जाएगा बाहर गया तो, अंदर के अंदर मेरे तेरा उपयोग अंदर में राख, अंदर में बहुत जानने की चीज है, ओ, उसमें निधि भरी है, बाहर जाने का विचार तेरे को बाद में नहीं आएगा और केवल ज्ञान होगा तो बाहर क्या तो प्रश्न छूट जाएगा। अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है। यथा यथा यह चेतन है, चेतन अर्थात आत्मा द्रव्य, इस प्रकार अन्वय व द्रव्य है। अन्वय के आश्रित, द्रव्य के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है। चैतन्य का अर्थ ज्ञान, ज्ञान दर्शन दो ले लेना, चैतन्य का अर्थ ज्ञान और दर्शन दो ले लेना, ज्ञान दर्शन मय करे तो गुण है। और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवत, एक मां दूसरा की नास्ती अभाव, एक साथ दो पर्याय नहीं होती, परस्पर अप्रवत अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय है, जो कि चीज विवर्तन की ग्रंथिया गांठ है। जानना जानना देखना, जानना देखने की जो पर्याय होती है वो तो जीव का परिणाम है, राग जीव का परिणाम नहीं है। राग द्वेष जीव का परिणाम नहीं है भाई, तेरे को बात बताते हैं कि जो ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है वो जीव का परिणाम है। अभी आगे, अब इस प्रकार त्रिकालिक को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव, देखो उसमें आगे क्या आया था, सर्वतः विष्णु भगवान अरहंत के जीव तीनों प्रकार युक्त समय को द्रव्य गुण पर्यायमय निज आत्मा को अपने मन से जान लेता है। और तो जान लिया तीन को, और तीन में से एक को अभी जानने की बात आया, क्या कहे। अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी मैं तीनों काल एक रूप भगवान आत्मा, जो दृष्टि का विषय है, सुधने का विषय है, वह उपयोग को जोड़ना है। उपयोग वहां जोड़ने से उपयोग सहित आत्मा का ज्ञान, त्रिकालिक को भी एक काल में एक समय में, तहां तक तो अभी मानसिक ज्ञान है सब। जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में, झूलता हुआ हार, मोती का हार, हार में अंतर्गत माना जाता है, मोती को वो हार में अंतर्लीन करते हैं, यानी मोती के पर का लक्ष्य छोड़कर हार दिखने लगता है, तो मोती होने पर भी मोती जुदा दिखने में नहीं आता है, हार में गर्भित होकर मोती का ज्ञान हो जाता है। क्या कहा, हार तो दिखाई देता है मगर मोती वो हार में अंतर्गत हुआ, मोती का ज्ञान उसमें आ जाता है, हार के ज्ञान में मोती का ज्ञान आ जाता है, मोती का ज्ञान करने के लिए मोती की सन्मुख होना जाता। बोल कीजिए, पर्याय का ज्ञान कैसे हो कि द्रव्य सन्मुख हो, तो अद्भुत से अद्भुत बात लाइट आ गई, अंधकार होने का काल हो तो प्रकाश होता ही है ना। क्या फरमाते हैं आचार्य भगवान, महामंत्र है शास्त्र में, मंत्र भरा है, मोह का नाश का उपाय। जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में, हार में अंतर्गर्भित मोती है, हार में अंतर्गत माना जाता है, हार को देखा तो मोती का ज्ञान हो गया, और मोती का ज्ञान होने से हार का ज्ञान नहीं होता है। हार का ज्ञान मोती का लक्ष्य करो तो हार दिखाई नहीं देता है, मोती ही दिखाई देता है, और एक मोती दिखाई देता है, 108 में दिखाई देता है, हार भी दिखाई। शांति भाई आ तो मंत्र से हो, हार देखा तो हार में मोती का ज्ञान हो गया, अने सफेद का ज्ञान भी उसमें हो गया कि नहीं, कि ज्ञान करने के लिए मोती को देखना सफेद को ज्ञान नहीं, हार को देखो तो गुण पर्याय का ज्ञान उसमें
आ गया, सहज रूप से आ गया, बिना प्रयत्न आ गया। बोलो, ऐसे द्रव्य पर दृष्टि पड़ी तो द्रव्य का आश्रय से हुआ जो परिणाम और गुण और सब उसमें ज्ञान आ जाता है। जुदा पर्याय का ज्ञान करने के लिए पुरुषार्थ, गुण का ज्ञान करने के लिए जुदा पुरुषार्थ होता नहीं है। मणि भाई, हेलो, ठीक बात है। जंगल में रहकर झाड़ का दृष्टांत दिया, बोलो है। जैसे मोतियों को झूलते हार हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, मोतियों को हार में अंतर्गत भी हो गया, हार दिखाई दिया तो मोती का ज्ञान उसमें सहज रूप से आ गया। भिन्न भिन्न मोती का ज्ञान करने के लिए अपना उपयोग घुमाना पड़ता। उसी प्रकार चीज वर्तन को चैतन्य में ही संक्षेपण अंतर्गत करके अपना जो उपयोग पर्याय है उस